हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 32। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्वैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोध विदो स्मरणं कुतस्त्वा, स्मरतव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वविद्धि निषेधास्यो। एतयोरेव किंकर आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा, नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुंदर मुखा अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने, करारविंदे न पदारविंदम्, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटीशयानम्, बाणं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारि, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारि, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवीपि बस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दान। सुन्दरमाधवीति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 32। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, त्वं वर्तमानं नरदेव देहेषु आनो प्रवृत्तो यम धर्म पूग लोभो नृतं चोर्यमाना र्यमोह ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ त्वं वर्तमानं नरदेव देहेश्व आनो प्रवृत्तो यमधर्म पूग लोभो नृतं चोर्यमाना र्यमोहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ त्वं वर्तमानं नरदेह देहेषु आनो प्रवृत्तो यम धर्म पूग लोभो नृतं चोर्यमानार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। शब्दात् त्वाम वर्तमानम, त्वाम मतलब तुमको, तुमको तो किसको, जैसे पहले श्लोक में श्री राजा परीक्षित जो है वो किसको बोल रहे हैं, धर्म कलयुग को, जो कि शूद्र के वेश में है। वो जब महाराजा परीक्षित से क्षमा याचना करने आया और कहा कि क्योंकि आप तो पतितों का उद्धार करने वाले, वैसे महाराजा परीक्षित तो अपनी तलवार उठा के उसको मारने के लिए तैयार हो गए थे। निषादमा ददे खड्गम कलये धर्म हेतव, कलयुग तो धर्म अधर्म का प्रतीक है तो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो कलयुग जो है वो महाराजा परीक्षित के अभिप्राय को जान गया, फिर क्या तत्पाल मूलम शिरसा समागत, तो फिर वो भयभीत होकर महाराजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। और क्योंकि महाराजा परीक्षित जो है वो पतितों का पतितों गिरे हुए जो पतित हैं उनको उनका रक्षण उनको संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, दीन वत्सल है, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको मारूंगा तो नहीं, परंतु नेति गुणाकेश यशोधराणम बद्धांजलिर्वे भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु, मैं तुम्हें अपने क्षेत्र में दिए, तम धर्म बंधु, तुम अधर्म के बंधु हो, मैं तुम्हें अपने क्षेत्र में तो रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम हमारे जो पूर्वज हैं गुड़ाकेश जो हैं उनके यश को खराब करने के लिए आए हो। तुम जानते नहीं हो कि हम अर्जुन के यश के उत्तरदायी हैं। भले ही बदान जले रे वे, तुम अगर अपने हाथ जोड़कर भयभीत होकर मेरे सामने आ गए हो तो भी तुम्हें मैं अपने तुम्हारे प्राण तो नहीं मारूंगा ना। बोला कि मैं आपको मारूंगा तो नहीं, न वर्तितव्यम भवता किंचन, मैं तुमको मारूंगा नहीं, अभयदान तो दूंगा परंतु अपने क्षेत्र में रहने नहीं दूंगा। तो आगे उसको बोल रहे त्वाम, यानी तुमको वर्तमानम अगर मैंने रहने दिया, अगर तुम कहीं पर भी स्थित हो गए, कहीं पर भी तुमने अपना डेरा जमा दिया, चाहे नर देव देहेशु, चाहे वो नर हो यानी मनुष्य हो, देव यानी देवता हो, और देहेशु यानी कि कोई राजा हो, अगर तुमने उसके अंदर अपना आस्थान जमा दिया, वर्तमान हो गए, तो क्या होगा, अनुप्रवृत्तो, तो फिर क्या होगा, तुम्हारे आने से हर जगह पर, अनुप्रवृत्तो मतलब हर जगह पर, यम धर्म होगा, अयम धर्म, अयम मतलब ये सारे अधर्म, अधर्म मतलब जो अभी आगे बताएंगे, बोला ये सारे धर्म जो हैं वो वहां पर हर किसी के अंदर आ जाएंगे जहां पर तुम हो। क्या क्या धर्म आ जाएंगे, लोभ, सबके अंदर लोभ, लालच उत्पन्न हो जाएगा, और अनृतम यानी असत्य, सब झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे, चौर्यम सब डकैती करेंगे, अनार्यम यानी अशिष्टता का व्यवहार करेंगे, अहम अर्थात विश्वासघात करेंगे, ज्येष्ठा अर्थात दुर्भाग्य उनके जीवन में आ जाएगा, च तथा माया यानी छल, कलह यानी झगड़ा, च तथा दम्भ, दम्भ मना घमंड, आप जहां पर रहोगे ना उसको कभी बख्शोगे नहीं, वो जगह कभी भी पवित्र धर्म वाली नहीं हो सकती, क्योंकि आप आते ही अधर्म का बोलबाला शुरू कर दोगे, आप आते ही जहां पर आप आ जाओगे तम वर्तमानम, जहां पर भी तुम स्थित हो जाओगे वहां पर क्या हो जाएगा, अनुवाद देखिए, यदि कली रूपी अधर्म को मनुष्य देवता या किसी कार्यकारी के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का निश्चय ही बोलबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित कलयुग को बता रहे हैं कि तुम्हें तो मैं अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जहां पर तुम आ गए वहां पर तो अधर्म ही अधर्म हो जाएगा। ये आज से 5000 साल पहले की बात है, और 5000 साल पहले महाराज परीक्षित ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जहां पर कलयुग को रहने दिया जाएगा वहां पर ये सब होगा। क्या होगा, लोभ। आज हम देखते हैं हर एक जीव के हृदय में लोभ है, और प्राप्त करना, और प्राप्त करना, और प्राप्त करना है, कहीं फुल स्टॉप नहीं। जब लाख कमाता था तो करोड़ चाहिए, करोड़ कमाता है तो अरब चाहिए, अरब कमा रहा है तो सृष्टि को खरीदना चाहता है ना। और उसके बाद असत्य, मतलब जहां पर सत्य असत्य बोलने की कोई वजह भी नहीं है ना, वहां पर भी अब असत्य बोला जाता है। चौर्यम, जहां पर हर कोई एक दूसरे की वस्तुओं को चुराना चाहता है। अनार्यम, कोई शिष्टाचार नहीं है। और अहम यानी हर कोई एक दूसरे, इवन अपने ही घर में चार लोग जो होते हैं, जो एक दूसरे के विश्वास पात्र होते हैं, वो भी अपने सीक्रेट्स छुपाते हैं और दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं। अब जिसके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे से साथ विश्वासघात करते हैं, और इस तरह से जीवों का दुर्भाग्य, हर कोई जो है ना वो दुर्भाग्यशाली है, और इसके लिए वो है ना कला है, हर जगह पर झगड़ा है। अब देखते हैं दुश्मन को तो बहुत कम आज मिलते हैं, सब अपने ही झगड़ा कर रहे होते हैं। एक ही घर में माता बच्चों के साथ झगड़ा कर रही होती है, सास बहू के साथ झगड़ा कर रही होती है, नंदे भाभी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं। ये कलहप्रद युग है, क्योंकि कलयुग को हमने अपने जीवन में उतार दिया। लेकिन महाराजा परीक्षित ने कल कहा, क्षेत्रे मदीय तम धर्म बंधु, मैं तुम्हें अपने क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जिस समय कलयुग आता है उसी समय धर्म नष्ट होने लगता है। क्या है धर्म? देखो, ये बात हमें याद रखनी है कि धर्म नष्ट होता है उसके चार पैर हैं। कौन से? तपः, सत्यम, दया, शौचम। ये चार पैर हैं, तपस्या, सत्यता, दया और शौचम। ये किससे नष्ट किससे होते हैं? ये नष्ट होते हैं, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 38 में, जब परीक्षित महाराज उसे कहते हैं, ठीक है तुम चार जगहों पे रह सकते हो। द्यूतम, पानम, स्त्रियम, सुना, यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम मतलब जहां पर जुआ खेला जाता है, पानम मतलब जहां पर शराब पिया जाता है, स्त्रियम जहां पर अवैध संघ किया जाता है, सुना जहां पर पशु हत्या की जाती है। ये चार अधर्म की जगह है, तुम उन जगहों पे जाके रह सकते हो। मतलब जहां पर ये चार काम होते हैं वहां पर कलयुग है, वहां पर अधर्म है, और जहां पर कलयुग आ जाता है वहां पर क्या हो जाता है? लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता और विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह, दंभ जैसे अधर्म का निश्चय ही बोलबाला हो जाएगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे हमारे जीवन में ये सब अपवित्रताएं, ये सब अनर्थ ना घुसे, तो हमें इन चार चीजों से बचना पड़ेगा। कौन सी चार चीजों से? द्योतम, पानम, स्त्रीय, सोना, जुआ, शराब और परिस्त्रीगमन और पशु हत्या। इनसे यदि हम बचेंगे तो हम अधर्म को, कलयुग को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से तात्पर्य समझाएंगे। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद देखी से। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी भी मत के अनुयायीगण धर्म के सिद्धांतों यानी तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं। अब ये बात श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताई है, किसी भी मत के अनुयायी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये जो पालन करने के लिए है ना, ये जो धर्म के सिद्धांत, वो सिर्फ सनातन धर्म जो हमारा धर्म है वो उसके लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, उसको ये जो धर्म के सिद्धांत है ना उनको पालन करने हैं, उनका पालन कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे भगोड़ा बनकर धर्म के नियमों का पालन ना करना पड़े। यानी कि कोई ये नहीं सोच सकता कि भाई ये तो आपके भागवतम में लिखा हुआ है ना, ये भागवतम तो सिखों की किताब नहीं है, ये भागवतम तो मुसलमानों की किताब नहीं है, ये भागवतम तो क्रिश्चियंस की किताब नहीं, ये भागवतम तो आपकी सनातन धर्म की किताब है, तो आप लोगों को ही इसको पालन करना है, हमें इसको पालन नहीं करना है। ये साफ साफ बता दिया, जहां पर ये अधर्म होगा, जहां पर ये धर्म के ये चार पांव सलामत नहीं होंगे, वहां पर ये सारे अनर्थ होंगे, वहां पर असत्य होगा, वहां पर लोभ होगा, वहां पर डकैती होगी। तो जहां पर ये सब हो रहा है उसका मतलब है उसने अधर्म को अपने क्षेत्र में घुसने दिया। तो यदि कोई राजा या कोई प्रजा यदि चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे संसार में ये अपराध ना हो, तो उसे धर्म के इस सिद्धांतों को पालना पड़ेगा। उसको ये जो शास्त्र है वो किसी एक मत के लिए नहीं है, साफ साफ लिखा, त्वाम वर्तमानम नर देव देहे, चाहे वो नर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई राजा हो, उसको ये धर्म के सिद्धांतों का पालन करना होगा, तभी वो इन सब अनर्थों से बच सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत ना तो रूढ़ियां हैं, ना ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। ये किसी ने बनाए नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी मत ने बनाए हो, किसी तबके ने, किसी फिरके ने बनाए हो, ये तो धर्म के सिद्धांत हैं। धर्मं तु साक्षात भगवत परिणितम, भगवान ने धर्म बनाया है, किसी मत ने नहीं बनाया। ऐसे नियामक सिद्धांत देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं।
आपको ये देखना है कि धर्म का उद्देश्य पालन हो रहा है या नहीं, तो फिर वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियां तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ इसका श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आपको वास्तविक सिद्धांत को समझना है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे मत में ये चीज अलाव है, आपके मत में ये चीज, जो सिद्धांत है सो है। अगर आप पशु हत्या करोगे तो आपके जीवन से दया समाप्त हो जाएगी, और यदि दया समाप्त हो जाएगी तो उसके जगह पर आपके जीवन में क्रूरता आएगी। अगर आप अवैध संग करते हो तो पवित्रता समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह पर अपवित्रता आएगी। तो ये सारे जो नियम हैं उनको आपको पालन करना है। धर्म निरपेक्ष राजा किसी भी मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपर्युक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धर्म निरपेक्ष यानी जिसमें धर्म के सिद्धांतों को पालन नहीं किया जाता है, तो किसी भी मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है कि भाई वो वहां पर धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो फिर वो उसके लिए जरूरी नहीं है, कोई ऐसे बोल सकता है। किंतु राज्य जो उसका राज्य होता है उपर्युक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है ना, क्योंकि वो भले बोलता रहे कि हमारे धर्म के शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो राज्य है वो जो अभी धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं, क्या तप शौचम दया सत्यम, ये उपर्युक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है। अगर उसको अच्छा धार्मिक राज्य प्राप्त करना है, अगर वो चाहता है कि मेरे राज्य में सब कुछ धर्म के मतलब सब कुछ सही होना चाहिए, ये चोरी नहीं होनी चाहिए, डकैती नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए, तो उसको इन सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इन सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। ये 5000 साल पहले बताया गया है कि कलयुग में जो राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, जो राजा होंगे, वो ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन रहेंगे। उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो राजा बनेंगे ना उनको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि धार्मिक सिद्धांत क्या है। उनको केवल अपनी इंद्र तृप्ति करनी है। उनको पहले क्या होते थे, राजा जो होते थे वो भगवान के भक्त होते थे, वो भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करते थे, जिसके कारण प्रजा संतुष्ट रहती थी। आज देखो न राजा संतुष्ट है, क्योंकि राजा धर्म के सिद्धांतों से उदासीन है, धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, तो फिर प्रजा दुखी है ना। तो इसके कारण उनके जो राज्य है उसमें ये सब हो रहा है। क्या लोभो नृत्यम चौर्यम अनार्यम महो, लोभ हो रहा है और हर जगह पर चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन कलयुग में राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे, अतएव उनके संरक्षण में धर्म के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वभावतः अनुगमन करेंगे। और जैसे राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी का कोई अर्थ नहीं है, ये वो भले ही कितना ही विज्ञापन करें, कितना ही एडवर्टाइजमेंट करें कि हम इस तरह से अपने राज्य से ये सब अधर्म को रोकेंगे, अभी कालाबाजारी रोकी जाएगी, झूठ बोलना रोका जाएगा, यहाँ पर धोखाबाजी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, कोई भी है ना यहाँ पर अधर्म नहीं होगा, कोई किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भले ही कितने ही प्रोपेगंडे क्यों ना करें, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो शास्त्र ने कह दिया। जहां पर
अधर्म को जगह मिलेगी, जहां पर कलयुग को जगह मिलेगी वहां पर तो ये सब होना ही है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में धर्म बढ़े, ये सब अत्याचार रुक जाए, ये सब भ्रष्टाचार रुक जाए, तो सबसे पहले कलयुग के जो ये चिन्ह है, ये जो अधर्म के चिन्ह है, क्या द्योतम पानम स्त्रिय सुना, जुआ खेलना, शराब पीना, पर अवैध संग करना और मांसाहार करना, इसको बंद करना पड़ेगा। और जितना हमें संभव है, हमारे लिए जितना संभव है, हम उतनी हद तक इन चीजों को रोक सकते हैं। अब आजकल राजा तक तो बात आवाज जाएगी नहीं, इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को अधिक से अधिक प्रीचिंग करनी चाहिए और लोगों को अधिक से अधिक बताना चाहिए कि आप सब यदि संतुष्ट होना चाहते हो, यदि अधर्म से और इन सब अधर्म की जो सिम्टम्स हैं उनसे यदि बचना चाहते हो तो आपको धर्म की शरण लेनी पड़ेगी। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान ने कहा है। क्या कहा है? सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरण व्रज, मेरी शरण में आ जा। और भगवान की शरण में आने का आसान तरीका, भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए, भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए, इसी से हम इन समस्त अपशकुनों से बच सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।